प्रथम अध्याय स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कथा साहित्य में नारी संदर्भ पृष्ठ एक। सन 1953 में इलाहाबाद से प्रकाशित नई कविता शीर्षक पत्रिका प्रकाश में आई। तब से नई कहानी, नया उपन्यास, नया नाटक, नई समस्या आदि की भी हिंदी साहित्य में चर्चा होने लगी। कहानी, नाटक, उपन्यास आदि विधाओं में नारी अपने संपूर्ण कलात्मक रूप में हिंदी साहित्य के आकाश में छा गई। कथा साहित्य में नारी प्राचीन काल से एक प्रमुख विषय के रूप में बनी रही। प्राचीन साहित्य में धर्म, समाज सुधार, आदर्शवाद कथा साहित्य का लक्ष्य होता था। प्राचीन साहित्य में नारी का जीवन, नैतिकता, भारतीय संस्कृति, गौरवपूर्ण परंपराओं एवं मर्यादित जीवन स्तरीय जीवन मूल्यों से ओतप्रोत रहा है। आधुनिक साहित्य यथार्थवादी हो गया है। जीवन एवं साहित्य में आज की नारी प्राचीन जीवन मूल्यों, परंपराओं, पुरातन आदि को छोड़कर नए मान मूल्यों को अपना रही है। आधुनिक कथा साहित्य का स्वर 1910 से 1925 के मध्य प्रारंभ हुआ। सन 1915 में प्रकाशित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि तुरंत बाद मुंशी प्रेमचंद की कथा संसार ने हिंदी साहित्य के प्रति पाठकों का दृष्टिकोण बदल दिया। प्रेमचंद ने नारी के परंपरागत रूप को बड़े घर की बेटी कहानी में दर्शाया। अपने स्वयं के बनाए आदर्श को प्रेमचंद जी ने कर्मभूमि उपन्यास में तोड़ दिया। कुंठित परंपराओं को तोड़ने और बदलने में हिंदी साहित्य अग्रणी हो गया है। चुके हुए लिजलिजे स्वार्थी संबंधों को तोड़ने की परंपरा चल पड़ी। कथाकार जैनेन्द्र अज्ञेय, इला चंद्र जोशी, मनु भंडारी ने संपूर्ण कथा साहित्य को नारी के इर्द गिर्द लपेट दिया। कथाकारों के लिए नारी ही केंद्र बिंदु बन गई। जैनेन्द्र के उपन्यास, सुनीता, कल्याणी, सुखदा, विवर्त आदि कृतियां नवीन शिल्प के साथ ही नारी के जड़ संस्कारों के प्रति घृणा दर्शाती है। जैनेन्द्र के नारी पात्र समाज के नियम कानून से मुक्त होना चाहते हैं। मुक्ति की चाह उनमें प्रबल है। अज्ञेय के नारी पात्र मनोवैज्ञानिक ढंग से समाज के खोखले नियम को तोड़ते हैं। आत्मयातना से बचने का प्रयत्न सभी आधुनिक नारी पात्र करते हैं। अज्ञेय के उपन्यास शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप अस्तित्ववादी भावना के प्रतीक हैं। अति आधुनिकता एवं छायावादी रोमांटिक एगोनी से सराबोर कथा साहित्य नारी के इर्द गिर्द घूमता है। नारी के अति आधुनिक रूप को कथा साहित्य के माध्यम से लाने का श्रेय इला चंद्र जोशी को है। कहानीकार इला चंद्र जोशी ने घृणामयी 1929, सन्यासी 1941, मुक्तिपथ 1950, जिप्सी, जहाज का पंक्षी 1955 आदि उपन्यास लिखकर नारी को अस्तित्ववादी रूप में प्रस्तुत किया। हिंदी कथा साहित्य में नारी की स्वतंत्रता देने की बात पृष्ठ दो चहुं ओर से उठने लगी। निम्नलिखित उदाहरण से बात स्पष्ट हो रही है। इन्वर्टेड कॉमा पेन। यशपाल के उपन्यासों में अमिता, दिव्या, झूठा सच में स्त्री को वर्ण की स्वतंत्रता देनी ही पड़ी। इस संदर्भ में शैला और हरीश के संबंध को लेकर नैतिकवादी आलोचकों ने आपत्ति की है, किंतु उपन्यास के लक्ष्य के अनुरूप नारी को यह स्वतंत्रता तो देनी ही होगी। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ डॉक्टर नगेंद्र, हिंदी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ 678। उपेंद्रनाथ अश्क, अमृतलाल नागर, रांगीय राघव, चतुर सेन शास्त्री, फणीश्वरनाथ रेणु आदि कथा लेखकों ने वैशाली की नगरवधु, मैला आंचल आदि उपन्यासों के माध्यम से प्राचीन रूढ़ परंपराओं की कलई खोल दी है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में अस्तित्ववादी स्वतंत्र नारी को स्थापित होने का पूर्ण अवसर मिला है। कथाकार मन्नू भंडारी, राजेंद्र यादव, शिव प्रसाद सिंह, गिरीश अस्थाना, मेहरुन्निसा परवेज, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने अति आधुनिक कथा साहित्य के माध्यम से नारी को एक विराट फलक पर आसीन कर दिया। नारी को अति महत्वाकांक्षी रूप में सामने लाने का श्रेय राजकमल चौधरी के उपन्यास मरी हुई मछली को दिया जाता है। समलैंगिक यौनाचार में लिप्त युवतियों को आधार बनाकर लिखा गया यह उपन्यास मछली मरी हुई अपने आप में एक आधार स्तंभ है। मन्नू भंडारी ने ऊंचाई कहानी लिखकर नारी के जात कर्म और नैतिकता के विरुद्ध यौनाचार की स्पष्ट झलक प्रस्तुत की है। शिवानी, कृष्णा सोबती आदि कथा लेखिकाओं ने तो नारी के काम पिपासु रूप को समाज के सामने रख दिया है। स्वच्छंदतावादी, यथार्थवादी, अस्तित्ववादी नारियों का एक बड़ा समूह तैयार हो गया है। सामाजिक नैतिक रूढ़ी पर प्रहार करते हुए कथा लेखिकाओं ने अति आधुनिक नारी जीवन को स्थापित किया है। युगीन संक्रमण और आधुनिकता बोध कराने वाले कथा साहित्य में मनु भंडारी का स्थान एक विशिष्ट स्थान रखता है। नारी जीवन के प्रत्येक पहलू पर मनु जी की पैनी दृष्टि रही है। स्वातंत्र्योत्तर भारत में नारी जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन आया है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रों में नारी ने अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराई है। नारी घर गृहस्थी के कार्यों के साथ साथ समाज के कार्यों को भी बखूबी अंजाम देने का प्रयत्न कर रही है। दोहरी जिंदगी जीते जीते नारी थकती भी है, बेबसी से रोती भी है, थक हार के टूट कर बिखरती नहीं है, वरन अपने अंदर के नारीत्व को आत्मविश्वास से जगाते हुए आगे बढ़ती है। वह कर्मठ भी है, ममतामयी भी और काम पिपासु भी। नारी उन्नति के शिखर पर चढ़कर भी अपनी स्वाभाविकता का गुण नहीं छोड़ती। पुरुष के सानिध्य की आवश्यकता होने पर नारी पुरुष से अपनी बात कहती है। पृष्ठ 3। पुरुष की बलिष्ठ बाहों में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। नारी मनुष्य होने के कारण अपनी चिरस्थायी सनातन शारीरिक मानसिक आवश्यकता को पूर्ण भी करती है, कभी कभी नैतिकता की सीमा भी पार कर जाती है। विपरीत एवं कठिन परिस्थितियों में भी नारी अपना स्वरूप खोना नहीं चाहती। स्वातंत्र्योत्तर नारी को समझौता परस्त हो जाना कदापि स्वीकार नहीं। समाज की व्यर्थ की टीका टिप्पणी से उसे घुटन होती है। मन्नु भंडारी की कहानी यही सच है, एक यथार्थवादी कहानी है। आलोचकों के अनुसार नारी समझौता करके जीवन यापन करती है। नारी को प्रणय निवेदन करके सुलभ प्रेम को प्राप्त कर जीवन व्यतीत करना एक यथार्थवादी दृष्टिकोण है, समझौता परस्त होना नहीं। इस बात को स्पष्ट करने के लिए इस उदाहरण पर दृष्टि डालें। इन्वर्टेड कॉमा ओपन, मेरी सांस जहां की तहां रुक जाती है आगे के शब्द सुनने के लिए, पर शब्द नहीं आते। मानो कह रही हो कि तुम कह क्यों नहीं देते कि निःस्वार्थ रूप में आज भी तुम मुझसे प्यार करते हो, फिर भी कुछ सुनने की आतुरता लिए मैं तुम्हारी तरफ देखती रहती हूँ। डैश तो कभी उसके पास कुछ लिखने को शेष है, क्यों नहीं लिख दिया निशीत ने अभी। क्वेश्चन मार्क, मैं मुड़कर दरवाजे की ओर देखती हूँ, रजनीगंधा के ढेर सारे फूल लिए मुस्कुराता सा संजय खड़ा है। डैश और विक्षिप्त सी दौड़कर उससे लिपट जाती हूँ। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ प्रतिनिधि कहानियाँ मन्नू भंडारी, पृष्ठ 24। आज भी नारी एक वैचारिक श्रृंखला में और पुरुष दूसरी वैचारिक श्रृंखला में आबद्ध है। इन श्रृंखलाओं के टूटने की प्रतीक्षा नारी के लिए घुटन और संतरास उत्पन्न कर रही है। नारी अपना मूल स्वरूप खोना नहीं चाहती। मूल स्वरूप खोने के बाद नारी के अस्तित्व पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग सकता है। वर्तमान नारी ममता से भरी पूरी तो है ही साथ त्याग, वीरता और अदम्य साहस का परिचय भी दे रही है। शायद यही कारण है कि नारी जीवन के नए अध्याय का जन्म हो रहा है। आज नारी धैर्य और साहस के साथ अपने कर्तव्यों का पालन कर रही है। प्राचीन वैदिक युग में उसके दिव्य रूप की चर्चा थी, उसे समाज के उच्च एवं सम्मानित स्थान प्राप्त था। धीरे धीरे मध्यकाल से उसकी स्थिति में परिवर्तन आने लगा। नारी के पतन के अवशेष आज भी समाज में दिखाई देते हैं।